नगरपालिका के भवन का निर्माण पूरा हुआ। कोठी और मंदिर के मध्य में सड़क के किनारे उत्तर की ओर खेतों के बीचों बीच यह भवन ऐसा खड़ा था मानो गांव भर को देख रहा हो। गत वर्ष नगरपालिका को 8,000 रुपये सरकारी खजाने में देने थे जो नहीं दिए गए। अतएव अध्यक्ष चंद्रा रेड्डी के नाम सरकार से नोटिस आया कि गत वर्ष और चालू वर्ष के कुल 16,000 रुपये एकमुश्त अदा किए जाएं। सबसे पहले नगरपालिका के भवन का उद्घाटन विचाराधीन था। उस समारोह के लिए 4,000 रुपये अलग रखे गए थे। भवन का उद्घाटन गवर्नर बहादुर करने वाले थे। सुवन्नापेट का रेलवे स्टेशन गुंडेरू नाले के समीप था। होते होते आबादी नाले तक फैल गई। अब की बाढ़ आने पर खेतों के बदले आबादी के बह जाने की अधिक संभावना उत्पन्न हो गई। स्टेशन से लेकर नगरपालिका के भवन तक रंग बिरंगे कागजों के तोरण झंडियां आदि लटकाई गई थीं। एक एक गज पर एक पुलिस का सिपाही खड़ा था। कॉलेज, हाई स्कूल, कोठी, पुलिस स्टेशन, नगरपालिका भवन आदि अनेक स्थानों पर कमानें बांधी गईं और उस पर सुस्वागतम अक्षर लिखे गए थे। विजयवाड़ा से बड़े बड़े अफसरों को आमंत्रित किया गया। जिला बोर्ड के सदस्य, तालुका बोर्ड के सदस्य आदि सभी पधारे। बहुत बड़ा समारोह मनाया गया। बैंड बाजों के दो दल बुलवाए गए। गवर्नर बहादुर पधारे। अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। गवर्नर बहादुर ने नए भवन का उद्घाटन किया। फिर उनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा, किसी और नगर पालिका का भवन इतना बड़ा नहीं है और यह सचमुच एक बड़ी कारपोरेशन के योग्य है। इसका निर्माण भविष्य में सुवर्णापेट के एक महानगर बनने का सूचक है। गवर्नर बहादुर का यह भाषण सुनकर एक क्षण के लिए लोगों ने यह मान लिया कि सुवर्णापेट एक महानगर बन ही चुका है। ऐसा मानकर उन्होंने जोर से तालियां बजाईं। गवर्नर साहब बोले, यह शहर चारों तरफ 10 मील तक फैलेगा, राजधानी बन जाएगा। जब आंध्र प्रांत बनेगा तब सुवर्णापेट में प्रांत के गवर्नर रहा करेंगे। भविष्य में सुवर्णापेट में ट्राम गाड़ियाँ चलेंगी, फौजी सिपाही घूमते नजर आएंगे। जमींदार साहब ने जिस प्रकार शहर में कॉलेज की स्थापना करने में सहायता दी, उसी प्रकार इसे महानगर बनाने में भी वे अवश्य सहायक होंगे। गवर्नर बहादुर का यह अत्यंत आशाजनक चित्र लोगों के कल्पना पथ में घूमने लगा। सभासदों ने तालियों से आकाश को गुंजा दिया। मेजों पर हथेलियां पटकी जाने के कारण उन पर लगी वार्निश थोड़ी मिट गई। सभा समाप्त होने तक 9:30 बज गए। गवर्नर बहादुर और सुसानी नगरपालिका भवन से बाहर आ रहे थे। उनके एक पार्श्व में चंद्रा रेड्डी और दूसरे में रंगाराव चल रहे थे। गणाचारी सिर पर चोटी बनाए, मस्तक पर कुमकुम का बड़ा तिलक लगाए, पीली साड़ी और लाल चोली पहने, बिना किसी गहने के ही सुंदर दिखने वाला शरीर लिए, दैवी महिमा झलकाने वाले मुखलक्षण लिए, मनुष्य के लिए अभोग्य यौवन लिए, किसी महान शिल्पी द्वारा गढ़ी हुई पार्वती की प्रतिमा के से कठिन वक्षस्थल लिए, पतली कमर और मंद हास करता हुआ कमल लिए, सलोने हाथों की हलचल लिए, राजहंसी की चाल के सदृश सुंदर और मंद गमन का विलास लिए, बाजार में आई और नगरपालिका भवन के द्वार पर नीम की एक डाली छोड़कर जिस मंद गति से आई थी, उसी मंद गति से गवर्नर बहादुर आदि महानुभावों के अस्तित्व की उपेक्षा करती हुई लौट गई। पुलिस के सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि गवर्नर बहादुर के रास्ते में किसी व्यक्ति को न आने दिया जाए। फिर भी ठीक उसी समय गणाचारी वहां कैसे आई, यह किसी की समझ में नहीं आया। किसी ने ठीक ठीक देखा तक नहीं। उसे देखकर चंद्रा रेड्डी कुछ बेचैन हो उठे। जमींदार साहब ने भौहें सिकोड़ कर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। गवर्नर बहादुर ने गणाचारी की ओर ध्यान नहीं दिया। वे सुसानी से बातें करने में व्यस्त थे। गणाचारी का आना और लौट जाना केवल 2 मिनट के भीतर ही हो गया। चंद्रा रेड्डी ने 2 कदम आगे बढ़कर गणाचारी द्वारा छोड़ी हुई नीम की डाली को पांव से हटा दिया। उसके पांव में कुछ चुभ सा गया। यह क्या था, यह देखने के लिए समय नहीं था। गवर्नर बहादुर इससे पहले सुवर्णापेट कभी नहीं आए थे। उन्होंने कोठी के भीतर घूम फिर कर देखा और बेहद खुश हुए। हरप्पा को राजकुमार के नाते पेश किया गया। उसने महीन धोती पहन रखी थी। गुलाबी रंग का रेशमी दुपट्टा उसके शरीर पर था और सिर पर पगड़ी बंधी थी। जरी की नक्श निगारी किया हुआ कोट पहन रखा था। गले में रत्नहार था। यह लिबास हरप्पा ने अपनी मर्जी से चुना था। उसे देखकर गवर्नर बहादुर अत्यंत प्रसन्न हुए। एटसन साहब बोले, बड़ा होशियार विद्यार्थी है। हरप्पा से उसके पिता ने कहा, गवर्नर बहादुर को झुककर सलाम करो। किंतु हरप्पा झुका नहीं, उसने सिर्फ सलाम किया। इसके बावजूद गवर्नर को उसे देखकर आनंद ही हुआ। गवर्नर बहादुर कॉलेज में गए। FA का दूसरा वर्ष चल रहा था। नागेश्वर राव ने कहा कि आगामी वर्ष में BA क्लास भी शुरू की जाएगी। गवर्नर ने कॉलेज की प्रशंसा की। विद्यार्थियों को उपदेश दिया। गवर्नर बहादुर के चले जाने के बाद चंद्रा रेड्डी के पाँव में चूहन का दर्द अधिक हो गया। वैद्यों को बुलाकर दिखाया गया, उनकी समझ में कुछ न आया। एक मांत्रिक को बुलाकर मंत्र चिकित्सा भी की गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिन तक चंद्रा रेड्डी बिस्तर से उठ न सका। चंद्रा रेड्डी के पाँव में चुभी हुई नीम की डाली सूख कर 4 दिन से नगरपालिका के नए भवन के द्वार के पास दीवार से सटी पड़ी थी। 5वें दिन चंद्रा रेड्डी की अस्वस्थता और बढ़ गई। गणाचारी सफ़ेद साड़ी पहनकर, छोटा सा तिलक लगाकर, आंचल के एक सिरे से कमर को कसकर अपने घर से निकली और कोठी के सामने से आकर सूखी हुई उस डाली को अपने हाथ में उठा लिया। फिर उसे एक पीपल की डाली के साथ बांधकर उसने चंद्रा रेड्डी के द्वार पर ला छोड़ा। चंद्रा रेड्डी के मन में गणाचारी के नाम का भय भी था और उसके प्रतिक्रोध भी। वह उसी गांव की थी। गणाचारी के संबंध में जो दंत कथाएं प्रचलित थीं, वह उन्हें जानता था। उन पर विश्वास न करता हो सो बात भी नहीं थी। हृदय में तिरस्कार भाव न था। दिखावे के लिए अपने मित्रों से बोलते समय तिरस्कार का प्रदर्शन अवश्य करता था। जब उससे किसी ने कहा कि गणाचारी उसके द्वार तक आकर लौट रही है, तो उसने उसे भीतर बुला भेजा। गणाचारी अपने घर से और सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर के भीतरी भाग से परिचित थी। इन दोनों घरों को छोड़कर सारे गांव में वह किसी और घर के भीतरी भाग से परिचित न थी। केवल द्वार तक वह जाती, उसे पार करके किसी घर के भीतर कभी न जाती थी। कोई उसे भीतर बुलाता भी न था। चंद्रा रेड्डी के बुलाए पर भी वह भीतर नहीं गई, अपने घर लौट गई। गणाचारी अकारण अपने भाई अथवा भाभी से भी न बोलती थी। वे भी उससे कभी कोई टेढ़ी बात नहीं करते थे। वह कभी कभी किसी विशेष कारण से ही बातचीत करती। उस घर में जैसा वह कहती वैसा ही चलता था। वह काम करने में आनाकानी नहीं करती थी। भाभी के साथ साथ घर का सारा कामकाज किया करती। चरखे पर सूत काटकर अपने खाने कपड़े लायक खुद कमाती थी। उसके भाई के 2 लड़के थे, उनका पालन पोषण गणाचारी खुद करती थी। भाई का नाम रंगैया और भाभी का नाम रंगम्मा था। गणाचारी का नाम गणाचारी ही था। पहली गणाचारी का नाम नागम्मा था, परंतु उसके बाद आज तक किसी गणाचारी का कोई और नाम न पड़ा। प्रत्येक गणाचारी को उसका पिता नागम्मा कहकर पुकारता था। उनके वंश में हर पीढ़ी में पहली संतान स्त्री और बाकी पुरुष इसी प्रकार के होते आए थे। बड़ी गणाचारी के मरने तक छोटी लड़की का नाम नागम्मा होता था। इसके मरते ही नागम्मा गणाचारी बन जाती थी। इस परिपाटी के विपरीत पहली बार रंगैया के स्त्री संतान न हुई। अभी तक उसके कोई स्त्री संतान न थी। यह देखकर कुछ लोगों ने कहा कि यही अंतिम गणाचारी है। कुछ औरों ने भविष्यवाणी की कि इस अंतिम गणाचारी के साथ साथ सुवर्णापेट का भी नाश होगा। जितने मुँह उतनी बातें चल पड़ीं। उस दिन शाम को चंद्रा रेड्डी के पाँव का दर्द कुछ कम हुआ, उसके दिल का धड़कना घट गया। दूसरे दिन शाम को वह अपने खेत तक पैदल जा पाया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के पीछे विद्यालय की जो दी हुई जमीन के अतिरिक्त 80 एकड़ खुश्क जमीन का वह मालिक था। उस जमीन में ज्वार और मकई की फसल खड़ी थी, कुछ भाग में अरहर की फसल थी, किसी और भाग में मिर्च का खेत पतले पतले सफ़ेद फूलों से भरा खड़ा था। हल्दी के खेत में पत्ते पुड़ियों की भांति खिले थे। मकई के पौधों में कच्चे कच्चे भुट्टे लग रहे थे। ज्वार की कड़वी को रोज रोज काट कर पशुओं को खिलाया जाता था। इसी से ज्वार का खेत आधा कटकर बाकी आधा हवा में पीछे को झुका हुआ ऊपर की तरफ कंघी किए हुए बालों की तरह दिख पड़ता था। चंद्रा रेड्डी खेत के चारों ओर घूम कर मिर्च और हल्दी के बीच मेड़ पर चल रहा था। इतने में उसकी बाईं ओर मिर्च के खेत में कुछ गलगल की आवाज़ सुन पड़ी। चंद्रा रेड्डी ने गौर से सुना और देखा, कुछ न था। वह और 2 कदम आगे बढ़ा, फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वह खुद चलता तो आवाज़ भी उसके पीछे पीछे आती और ठहर जाता तो आवाज़ बंद हो जाती। वह फिर चलने लगा, इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। वह लगभग 100 गज तक चला, दाईं बाईं ओर कहीं भी कोई आवाज़ न सुन पड़ी। फिर वह कुछ सोचने लगा, गणाचारी ने नीम की डाली को पीपल की डाली से बांधकर मेरे आंगन में ला छोड़ा, फिर मेरा दर्द कम हुआ। मेरे सही पूर्वज इस गांव के बड़े आसामी रहते आए हैं। मैं नगरपालिका का अध्यक्ष हूँ। इस पदवी में मैं जितना सोचता था उतनी स्वतंत्रता नहीं है। 2 लाख रुपये खर्च करके इतना बड़ा भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी भला? ऐसी नगरपालिका के न होने से 300 वर्ष तक इस गांव का क्या बिगड़ा था? पहले यहाँ वेणुगोपाल स्वामी के उत्सव मनाए जाते थे, अब उन्हें बंद कर दिया गया है। जमींदार साहब ने एक अंग्रेज स्त्री से विवाह किया है। पुरानी रानियों का ढंग और था, देश उन्नति कर रहा है। केशव राव कहते थे कि यह वास्तविक उन्नति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में पद की अभिलाषा, धन की अभिलाषा और अधिकार की अभिलाषा खूब बढ़ रही है। मेरी ही बात ले लो, नगरपालिका के अध्यक्ष पद को अब मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा बेटा नए महल बनवाएगा, नए बगीचे लगवाएगा, हम 2,000 एकड़ जमीन खरीदेंगे। मुझ जैसा धनवान कोई न होगा। सारे जिले में हमारी बात चलेगी। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे बेटे का बेटा होगा, वह बड़ा होकर पदाधिकारी बनेगा, वह भी कमाएगा। इतनी देर में जो कुछ सोच रहा हूँ वह सब केवल धन और अधिकार के बारे में है। भगवान के बारे में कोई विचार आता ही नहीं। तेलुगु की पढ़ाई में भक्ति और भगवान भरे पड़े हैं, अंग्रेजी पढ़ाई में शायद वे नहीं हैं। तेलुगु की पढ़ाई में चारों वर्णों और उनके धर्मों का वर्णन भी है, अंग्रेजी पढ़ाई में सारे मनुष्य समान हैं। क्या हमारे देश की पढ़ाई में सारे मनुष्य समान नहीं हैं? क्या हमारे देश की पढ़ाई में दया माया नहीं है? 10 वर्ष पहले इतने बड़े शहर नहीं थे, धान के इतने खेत नहीं थे, इतनी सभ्यता न थी, परंतु साथ ही साथ इतने गरीब लोग भी न थे। उस समय इतने टैक्स नहीं थे, शायद इतनी सुविधाएं भी न थीं। चलते चलते चंद्रा रेड्डी को फिर से गलगल की आवाज़ सुन पड़ी। वह खड़ा हो गया। उसके खड़े होने से अब की बार वह आवाज़ रुकी नहीं। ऐसा लगा कि उसके रास्ते को काटता हुआ कुछ चला गया है। रेड्डी ने गौर से देखा, एक सांप आड़े रास्ते से जा रहा था। उसका सिर नजर नहीं आया, पूंछ रास्ते में आड़ी दिखाई पड़ी। चंद्रा रेड्डी एक कदम पीछे हट गया। हल्दी के खेत से सांप सिर उल्टा करके रास्ते में लौट आया। चंद्रा रेड्डी को उसका सिर दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, जहां तक दृष्टि जा सकती थी कोई आदमी दिखाई न दिया। भाग जाना भी उसे न सूझा। पांव कांपने लगे। वह अपलक हिलते डुलते सांप की ओर देखने लगा। सांप काला था। 1, 2, 3, 4 सिर दिखाई दिए। 4 सिर वाला सांप देखकर चंद्रा रेड्डी ने उसे दिव्य सर्प समझ लिया, पर पगड़ी उतार कर प्रणाम करना उसे न सूझा। ज्यों का त्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ सा देखता खड़ा रहा। सांप अपनी पूंछ के बल पर खड़ा हो गया। एक तरफ हल्दी और दूसरी तरफ मिर्च के 1 गज ऊंचे पौधे खड़े थे। सर्पराज ही उतने ही ऊंचे खड़े हो गए। रेड्डी ने आंखें मूंद लीं और फिर उन्हें खोलकर सांप को देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि सर्प स्वामी के चारों सिर कुचल दिए गए हैं। चारों मुखों से निकलती वे न जाने जीभें थीं या रक्त की धाराएं। रेड्डी के मन में विचार आया, यह सांप है, इसे मार डालना चाहिए। फिर उसने यह सोचा, यह दिव्य सर्प है, क्या मैं इसे मार सकूंगा? फिर उसके मन में आया, इस सांप से स्वयं भी बच निकलूंगा कि नहीं, कौन जाने। 2-3 मिनट बीत गए, सर्पराज वैसे ही खड़े थे। आगे जाना हो तो सांप सम्मुख है ही, पीछे को जाना चाहे तो शायद पीछा करके डस लेगा। थोड़ी देर बाद रेड्डी को एक उपाय सूझा। एक एक पग पीछे जाने की उसने ठानी, किंतु सारा शरीर कांप रहा था। बड़े प्रयत्न से उसने पीछे की तरफ कुछ कदम उठाए। 4 कदम पीछे हटते ही उसे लगा कि सांप भी उसका पीछा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसका सारा धैर्य जाता रहा। चीखने के लिए उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह जहां का तहां स्तंभित खड़ा हो गया। इतने में दूर से किसी की बात सुन पड़ी। 4 उंगलियों को एक साथ जोड़ने की नाई सर्प ने 4 सिरों को एक साथ जोड़कर उन्हें फन की तरह सिकोड़ लिया और सिर झुकाकर हल्दी के खेत से मिर्च के खेत में चला गया। चंद्रा रेड्डी ये सब देख रहा था, पर हिल न पाया। दूर से आए हुए आदमी ने रेड्डी से बातचीत करनी चाही, पर मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। लगभग आधे घंटे बाद वह कुछ बात कर पाया। फिर कोई कारण न बताकर वह उस आदमी के साथ मिर्च के खेत में हर तरफ घूमने लगा। सारे खेत में ढूंढने पर एक छोटा सा कीड़ा भी दिखाई न दिया। हल्दी का खेत घना हरा भरा, कल्याण सूचक, चौड़े चौड़े पत्तों से सुशोभित, अभी अभी पानी से धुला हुआ था। ऐसे खेत को छोड़कर सरप्राज इस मिर्च के खेत में क्यों गए होंगे? भला यह मिर्च का खेत जिसमें पौधे दूर दूर हैं, जिसकी जमीन धूल से भरी है, जो शुभ सूचक नहीं है, जिसमें जाने से सरप्राज का पता आसानी से लग सकता है, जिसे खाने से मुँह में जलन पैदा होती है। चंद्रा रेड्डी चुपचाप घर पहुँचा। उसने खाना नहीं खाया। यह कहकर कि उसे कोई न जगाए वह सो गया। न जाने उसके प्राण किस कोने में जा पहुंचे। रामेश्वरम धर्मराव के नाम से घबराता था। उसे लगा कि धर्मराव उसका विरोधी है। धर्मराव के बचपन में ही रामेश्वरम उसका कुछ बिगाड़ न सका था। अब तो वह बीए की परीक्षा दे चुका था। वेतन कुछ भी हो, महाविद्यालय में अध्यापक था और कवि के नाते प्रसिद्ध था। उसे नीचा दिखाना अब रामेश्वरम के बस की बात न थी। 5 बरस से रामेश्वरम के मन में जो संकल्प था, धर्माराव के कारण उसमें बाधा पड़ रही थी। वैसे धर्माराव ने स्वयं कोई बाधा न डाली थी, परंतु उसे देखकर रामेश्वरम स्वयं भयभीत होता रहा था। उसकी इच्छा थी कि इस भय को छोड़कर व्यवहार करे, परंतु जब कभी यह संकल्प उसके मन में आता, तुरंत भय भी उसे आ दबोचता था। वर्षा ऋतु आई, मंदार वृक्षों में फूल खिले और मेघों से आच्छादित आकाश में अव्यक्त संध्या राग के बदले एक अनोखी रक्तिमा झलकने लगी। सूर्य के किरणों के बदले घरों में दीप टिमटिमाने लगे। दोपहर तक लगातार झड़ी लगी और फिर थम गई। बाजारों में जहाँ तहाँ पानी ही पानी था, सारे गली कूचे कीचड़ से भरे थे। केवल कोठी के सामने वाली सड़क पानी और कीचड़ से मुक्त सूखी दीख पड़ती थी। देवदासी बाल संवार कर उन्हें चोटी में बांधे, तीन मंदार पुष्पों को चोटी में सजाए, मस्तक पर भभूत और उस पर कुमकुम का खड़ा लाल तिलक लगाए, आँखों में पतली लकीर सा काजल लगाए, दाहिने गाल पर काजल की छोटी सी बिंदी संवारे, अधरों पर परिव्याप्त पान की लाली को झलकाती हुई सफ़ेद रेशमी साड़ी और कमर में सोने का पट्टा पहनकर काली चोली पर सोने के कंठार की विचित्र सियाहा फैलाती हुई वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर की ओर निकल पड़ी। गिरिका ने दासी की ओर देखा। उसकी कनखियों की रेखा पंक्ति में सित और असित कांतियां भरी पड़ी थीं, मानो काली घटाओं और चमकती विजलियों के आपस में लिपट जाने से उत्पन्न वर्षा की पुनः सृष्टि कर रही हो। देवदासी का वक्षस्थल काली चोली से ढका था। उस पर सोने का कंठार ऐसा लगता था मानो किसी महापर्वत के दो श्रृंगों पर नील मेघों का आच्छादन हुआ हो और उन मेघों में रह रहकर सौदामिनी दमक रही हो। वर्षा ऋतु के साथ सटकर आए हुए शरतकाल की भांति उसकी सफेद साड़ी एक अनोखी सफेदी के साथ धूप का सा उजलापन बिखेर रही थी। देवदासी मंदिर की ओर चलने लगी। नूपुर की ध्वनि के साथ चेलांचल रूपी पताका से सुशोभित वह साक्षात ऐसी दीख पड़ी मानो मेघों से आगे चलने वाला इंद्र का रथ हो। दोनों पार्श्वों में किए गए महावर के लाल लेप से अरुण छटाएं प्रसारित करने वाले उसके चरण कमल ऐसे लगते थे मानो वे चल न रहे हों। अभी तो किसी सिद्ध पुरुष के दिए हुए पदलेप के कारण बिना किसी प्रयत्न के देवदासी को आप ही उठाए लिए जा रहे हों। देवदासी कोठी के मोड़ पर पहुंची। वहां से मंदिर की ओर जाना पड़ता था। दूर से रामेश्वरम ने उसे देख लिया। तुरंत उसने अपनी दृष्टि देवदासी पर गड़ा दी और ठीक उसी तरफ आने दिया। देवदासी ने उसे देखा तक नहीं। वह कोठी के प्राकार के आधे भाग तक जा पहुंची। उधर से रामेश्वरम आ पहुंचा। देवदासी सिर उठाकर किसी को नहीं देखती थी। उसने किसी पुरुष को सामने से आता जानकर परे हटना चाहा। रामेश्वरम ने आगे पीछे देखा। आसपास कोई न था। देवदासी को ऐसा लगा कि सामने आता हुआ पुरुष बार बार उसके रास्ते में आ रहा है। सिर उठाकर क्या देखती कि जिस व्यक्ति ने एक बार उसका अपमान किया था वही सम्मुख खड़ा है। देवदासी घबरा गई। फिर उसने हृदय में अपने प्रभु का आह्वान किया और खड़ी हो गई। रामेश्वरम बोला, छोरी तू 17 बरस की हो गई है, बता तो तुझे पहले किसने पाया है। गिरका हाथ जोड़कर आँखें मूंद कर बोली, श्री वेणुगोपाल स्वामी ने। रामेश्वरम ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसी क्षण सारे आकाश में फैले हुए महानील मेघ में दसों दिशाओं को दहलाती हुई बिजली गिरी। रामेश्वरम घबरा कर इधर उधर भाग दौड़ मचाने लगा। गिरिका निश्चल मन से आगे बढ़ी। वह वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर के सम्मुख जा खड़ी हुई। हरप्पा राष्ट्रीय महाविद्यालय में धर्माराव से कुछ बातचीत करके उसी समय पैदल लौट रहा था। उसके पीछे एक नौकर आ रहा था। गिरिका वहाँ क्यों खड़ी थी यह किसी को ज्ञात न था। इतने में हरप्पा उसके पास आ पहुँचा। उसकी आयु इस समय 13 वर्ष की थी। पहले की अपेक्षा उसके शरीर में थोड़ी सी दृढ़ता आ गई थी। आकृति में पुरुषोचित लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसकी दृष्टि देवदासी पर पड़ी। उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह आज संपूर्ण यौवनवती बनी कोई महारानी सी लगती थी। उसकी भावों और आँखों में एक प्रकार का वैभव था। कंधों में एक अनोखी अकड़ थी। शरीर में किंचित मांसलता थी और वेशभूषा से ऐश्वर्य झलकता था। ऐसा लगता था कि आँखों की सार्थकता उसे देखने में ही है। उसके मस्तक पर लगा खड़ा तिलक उसके वैष्णवी होने का सूचक था। देवदासी ने यों ही हरप्पा की ओर देखा। दोनों की नजरें मिल गईं। हरप्पा के मन में आया कि देवदासी को प्रणाम करे। उसे देवदासी की आंखों में भगवान खेलते हुए दिखाई दिए। देवदासी ने हरप्पा को पहचाना, यही शायद जमींदार का पुत्र है। भगवान के उत्सव इधर बंद पड़े थे, शायद यही कुंवर जी बड़े होकर उन्हें फिर प्रारंभ करेंगे। यह सोचती हुई गिरिका मंदिर में चली गई। हरप्पा कोठी की तरफ चल पड़ा। रामेश्वरम को सिनेमा चलाने की अनुमति देने का प्रश्न उपस्थित हुआ। नगरपालिका के सदस्यों की बैठक हुई। गार्डिनर साहब ने सुझाव का समर्थन किया। इस पर कबीर नामक सदस्य ने कहा, सरकार का कर्ज हम पर चढ़ा हुआ है और हम उसे अदा नहीं कर पा रहे हैं। शहर के सारे लोग दरिद्र बन गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, किसी के पास पैसा नहीं रहा। अब सिनेमा भी आ जाएगा तो लोगों को उसकी लत लग जाएगी और घर में बीवी बच्चों को बिलबिलाते हुए छोड़कर जिस प्रकार कुछ लोग शराब की दुकान पर दौड़ते हैं उसी प्रकार सिनेमा की तरफ भी दौड़ पड़ेंगे। कम से कम प्रतिदिन 200 रुपये तो सिनेमा को अर्पित हो ही जाएंगे। अर्थात महीने में 6,000 रुपये होंगे। इतने पैसे लोगों से छीने जाएंगे तो लोग कंगाल हो जाएंगे। अभी तक हमारे समाज में जो धनवान हैं वे अधिक धनवान होते जाएंगे। कुछ लोग कामकाज किए बिना ही अधिक वेतन पाने लगेंगे। सिनेमा हॉल में धांधली करने वाले कई गुंडे तैयार हो जाएंगे। नगर पालिका के लोगों से जो टैक्स वसूल करना है वह कुल मिलाकर भी इतना रुपया नहीं होता। मेरा सुझाव है कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। कबीर का यह भाषण चंद्रा रेड्डी को जचा, परंतु उसे रामेश्वरम का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सुझाव पर वोट लिए। कबीर के पक्ष में केवल 2 वोट पड़े, एक कबीर का और दूसरा रामचंद्र राजू का। अतएव दूसरे दिन ही सिनेमा प्रारंभ हुआ। उस दिन रामेश्वरम ने लंका दहन नामक खेल मंगवाकर सारे गांव वालों को मुफ्त दिखाया। झुंड के झुंड लोग आकर देखने लगे, सब खुश हुए। रामेश्वरम ने सिनेमा हॉल में चाय पार्टी का प्रबंध किया। तहसीलदार आदि वरिष्ठ अधिकारीगण पार्टी में शरीक हुए और सिनेमा देखकर चले गए। 4 महीने में सिनेमा में लगाई गई पूंजी रामेश्वरम को वापस मिल गई। कबीर का हिसाब गलत निकला। प्रतिदिन 2 शो चलाए जाते और दोनों के 800 रुपये तक वसूल होते थे। पहले महीने में 20,000 और दूसरे तीसरे महीनों में क्रमशः 12,000 और 16,000 के बीच आमदनी हुई। इसके अतिरिक्त रामेश्वरम को तालुका बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सफर खर्च मिल रहा था। वह महीने में 20 दिन तालुका बोर्ड के स्कूलों की जांच करता रहा और इस तरह 600-700 का बिल बनाकर पैसे ऐंठ लेता। अन्य सदस्यों को यह धोखा मालूम था, पर वे कुछ नहीं कहते थे। रामेश्वरम ने तालुका बोर्ड के मातहत काम करने वाले अध्यापकों को सताना शुरू किया। अमुक अध्यापक ने खड़े होकर उसे सलाम नहीं किया, अमुक ने ठीक ढंग से उसकी इज्जत नहीं की। इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाकर कई अध्यापक सस्पेंड किए गए। एक अध्यापक ने तंग आकर कहा, जूं को अधिकार दे दो तो रात भर काटती रहे, यहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इस आलोचना के फलस्वरूप उस अध्यापक को तुरंत नौकरी से हटा दिया गया। रामेश्वरम के घमंड की सीमा न रही। 15-20 रुपये का वेतन पाने वाले सारे अध्यापक उसकी मेहरबानी के लिए तरसने लगे। गुंटूर में एक बीमा कंपनी का एजेंट रहता था। वह धर्माराव का सहपाठी था। उसने 6ठी कक्षा में 3 बार, 7वीं में 3 बार, 8वीं में 4 बार अनुत्तीर्ण होकर यह जान लिया था कि पढ़ाई से उसका 36 का नाता है। इसीलिए वह बीमा कंपनी का एजेंट बन गया। 4-5 वर्ष में ही उसने 10 लाख रुपए के बीमे करवाए और कंपनी वालों की प्रशंसा का पात्र बन गया। अब वह प्रतिमास 300 का वेतन पा रहा था। उसका नाम निरंजन राव था। वह आकर रामेश्वरम की चापलूसी करने लगा। तालुका बोर्ड के सभी अध्यापकों से 1-1 हज़ार का बीमा करवाने पर उसने रामेश्वरम को 1,000 रुपये घूस देने का वचन दिया। रामेश्वरम ने पहले अपने रुपए ऐंठ लिए और फिर जबरदस्ती अध्यापकों का बीमा करवाना शुरू किया। 1-2 अध्यापकों ने रामेश्वरम के विरुद्ध कलेक्टर के पास शिकायत की। कलेक्टर ने तहकीकात की, परंतु उसकी रामेश्वरम से दोस्ती थी, अतएव उसने सभी शिकायतों को उचित उत्तर दे दिया। शिकायत करने वाले सब अध्यापकों को एक एक करके नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रामेश्वरम ने सोचा कि सिनेमा के साथ साथ एक नाटक कंपनी भी शुरू की जाए तो अधिक मुनाफा होगा। कोई नया हॉल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अभिनेताओं के अतिरिक्त कोई भी खर्च न था। बोर्ड के अध्यापकों में कुछ लोग अच्छा गाते थे। रामेश्वरम ने सोचा उन्हीं अध्यापकों से नाटकों में काम कराया जा सकता है। उन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, केवल मुख्य पात्रों के लिए अभिनेताओं को लाना होगा। रामेश्वरम स्कूलों की जाँच करता घूम रहा था। रंगापुर में एक स्कूल मास्टर था। वह बोर्ड की पाठशाला का मुख्य अध्यापक था। धूप का रुख देखकर छाता पकड़ने की कला में वह अत्यंत पटु था। जब अन्य सभी अध्यापक रामेश्वरम के अधिकार आतप से जले जा रहे थे, तब वह उसके उसी अधिकार को चांदनी मानकर उसमें चकोर की भांति आनंद विभोर हो रहा था। उसका नाम था जोशी। वह पहले किसी दूर के गाँव में रहता था। रामेश्वरम ने उसे सुवन्नापेट के करीब लाने के उद्देश्य से रंगापुर भेजा। जोशी सदैव रामेश्वरम का बखान करता रहता कि वह साक्षात मानधाता का अवतार है, धर्म की मूर्ति है, दया सागर है, आश्रित का कल्प वृक्ष है और सुंदरता में मदन को पराजित करने वाला है। रामेश्वरम की दृष्टि में ताल्लुके के सभी अध्यापकों में जोशी का अत्यंत मान था। उसका ख्याल था कि बच्चों को पढ़ाने का ढंग अगर कोई पूरी तरह जानता है तो केवल जोशी। रामेश्वरम रंगापुर के दौरे पर आया। जोशी ने उसे पहले कभी भोजन पर नहीं बुलाया था। इस बार उसने सोचा कि रामेश्वरम जी ने वेतन वृद्धि आदि देकर मुझे अपना प्रधान सलाहकार बनाया है, सो उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। रामेश्वरम ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जोशी के घर में वह और उसकी पत्नी केवल 2 व्यक्ति थे। पहले स्कूल का समय सवेरे 7 से 10 बजे तक और दोपहर को 1 से 5:30 तक रहा करता था। रामेश्वरम ने सवेरे का समय बदलकर 10 से 1 बजे तक कर दिया। अतएव जोशी जब भोजन करके स्कूल जाता तो शाम तक उसकी पत्नी मंगम्मा अकेली घर बैठी रहती। उसका सारा समय अकेलेपन में गुजरता था। वह एक पुरोहित की बेटी थी, नवीन सभ्यता के लक्षणों से अपरिचित थी। दिखावे के लिए बहुत लजा जाना, पुरुषों से न बोलना, बार बार आंचल संवारना, आकर्षक ढंग से लज्जा का अभिनय करना आदि हाव भाव उसे ज्ञात न थे। बुद्धि और विवेक की अपेक्षा वह धन से अधिक प्रेम करती थी। गोरी गुमटी थी, मुख में कोई विशेष आकर्षण न था, फिर भी बड़ी बड़ी आँखों के कारण देखने वालों को सुंदर लगती थी। जोशी का रंग काला था, 10 वर्ष पहले चेचक के कारण उसका चेहरा दागों से भर गया था, अतः बदसूरत लगता था। उसके विचारों में जितनी विद्रूपता थी उतनी ही आकृति में भी थी। पति पत्नी के परिवारों में पुराना नाता था। जोशी का पिता ही पुरोहित था। जोशी ने 7वीं कक्षा पास की थी और ट्रेनिंग पाकर अध्यापक बना था। मंगम्मा के शरीर पर गहने नहीं थे, इसी से पति के प्रति उसके मन में बड़ा अनादर था। जोशी ने रामेश्वरम को भोजन पर बुलाने के उपलक्ष में हरी मिर्च, अदरक आदि लाकर बड़े बनवाए, साबुदाने की खीर बनवाई, खीर में काजू, इलायची आदि मेवा और सुगंधित वस्तुएँ डलवाईं, आलू का साग बनवाया। रंगापुर में मीठा दही मिलता था, वह भी मंगवाया। जोशी मुख्याध्यापक था। उसने दूसरे अध्यापक से कह दिया कि आज स्कूल आने में उसे देर लगेगी। फिर वह रामेश्वरम की आवभगत में जुट गया। रामेश्वरम ने ब्राह्मण के घर कभी भोजन नहीं किया था। जोशी ने पत्नी के साथ बैठकर सही पदार्थ बड़े जतन से तैयार करवाए। पहले रामेश्वरम की पत्तल परोसी गई। उसे भोजन अमृत तुल्य लगा। वह बारी बारी से थाली में परोसे खाद्य पदार्थों की ओर देखता और फिर मंगम्मा की ओर घूरता। मंगम्मा की ओर उसका घूरना जोशी ने देख लिया, पर रामेश्वरम ठहरा अधिकारी, सो जोशी बेचारा क्या कहता। उसने सोचा यूं ही देख रहा होगा। भोजन करते करते रामेश्वरम ने रसोई की प्रशंसा के पुल बांध दिए। मंगम्मा के समक्ष जोशी से कहा, आपकी श्रीमती जी सचमुच रसोई बहुत अच्छी बनाती हैं। आज की रसोई के बनवाने में जोशी का जो हाथ था उसका उसने उल्लेख तक नहीं किया। मंगम्मा बड़ी प्रसन्न हुई। रामेश्वरम को पत्तल पर खाने की आदत नहीं थी, इसी से भोजन समाप्त होने तक पत्तल अस्त व्यस्त हो गए। क्या बड़े, क्या खीर, क्या साग, क्या दही, सब एक से एक स्वादिष्ट थे। मंगम्मा द्वार की ओर से खड़ी देख रही थी कि अतिथि को कौन सा पदार्थ चाहिए। हर बार रामेश्वरम उसकी तरफ घूर कर ही कोई पदार्थ मांग रहा था। भोजन के बाद सामने के कमरे में बिस्तर लगाया गया। जोशी ने रामेश्वरम से थोड़ा आराम करने को कहा और खुद जल्दी जल्दी भोजन करके स्कूल चला गया। मंगम्मा ने भोजन किया। सचमुच उनके घर में इससे पहले इतनी स्वादिष्ट रसोई नहीं बनी थी। उसने चाव से खाना खाया। फिर नौकरानी द्वारा रामेश्वरम की पत्तल निकलवा कर वह पीछे के कमरे में पलंग पर पड़ रही। दोनों कमरों के बीच दीवार थी, द्वार बंद था। दोपहर का समय था। सामने के कमरे में रामेश्वरम ने कुछ आवाज़ की और कहा, थोड़ा पानी मिलेगा। मंगम्मा भीतर जाकर लोटे में पानी ले आई और द्वार के पास रखकर खुद एक तरफ खड़ी हो गई। रामेश्वरम ने लोटा लेते लेते उसकी ओर देखा। वह द्वार की ओट में चली गई। पानी से रामेश्वरम ने हाथ और मुंह धोया और फिर पीने के लिए पानी मांगा। मंगम्मा पुनः पानी ले आई तो रामेश्वरम ने अपना लोटा आगे कर दिया। मंगम्मा उसमें पानी उड़ेलने लगी। उसी समय रामेश्वरम ने उसका हाथ थाम लिया। मंगम्मा चौंक पड़ी, लोटा छोड़कर भीतर भाग गई। रामेश्वरम ने 10 रुपये का नोट निकालकर भीतर फेंका। मंगम्मा ने उस नोट को गौर से देखा और थोड़ी देर बाद उसे रामेश्वरम के कमरे के द्वार पर ढककर खुद अपने कमरे में चली गई। द्वार भीतर से बंद कर लिया। रामेश्वरम घबरा गया, कहीं वह जोशी से कहेगी तो नहीं। फिर सोचा, जोशी मेरा क्या कर लेगा। फिर उसके दिल का धड़का कम नहीं हुआ। उसने स्कूल जाकर अपनी जांच समाप्त करके राय लिखी कि सब कुछ ठीक है। एक विद्यार्थी ने अपने निबंध में स्नान शब्द लिखा था। रामेश्वरम ने उसे काटकर स्थान बनाया। उसके जाने के बाद उसकी अद्वितीय पंडिताई पर सारे अध्यापक खूब हंसे। जाते जाते रामेश्वरम ने जोशी को आतिथ्य की बार बार प्रशंसा की। जोशी ने सोचा कि अब उसे बहुत बड़ा आसरा मिल गया है। 1 महीने के बाद रामेश्वरम फिर रंगापुर जा पहुंचा। वह सोचने लगा, मंगम्मा ने जोशी से उस दिन की बात कही तो नहीं, जोशी क्या कहेगा। यह संदेह मन में लेकर उसने स्कूल की जांच शुरू की, परंतु जोशी के बर्ताव से उसे धीरज बंधा कि उस दिन का प्रसंग जोशी के कान तक नहीं पहुँचा है। फिर भी उसने जिक्र छेड़ने के उद्देश्य से कहा, जोशी जी, उस दिन आपके घर का भोजन सचमुच अमृत तुल्य था। जोशी ने फिर से विनती की, आज ही हमारे घर भोजन पर पधारें। रामेश्वरम ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है, कुल 4 मील पर ही तो सुवन्नापेट है, चला जाऊंगा। जोशी ने अनुरोध किया, नहीं नहीं आपको हमारे यहाँ चलना ही होगा। रामेश्वरम ने कहा, अब की नहीं, अगली बार दौरे पर आऊँगा तो आपके यहाँ चलूँगा। इस प्रकार बात वहीं चल गई। जोशी ने आकर अपनी पत्नी से कहा, 2-3 दिन में प्रेसिडेंट साहब फिर हमारे यहाँ भोजन पर आएंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाओगी न? मंगम्मा ने पूछा, वे जमींदार साहब के क्या लगते हैं? जोशी बोला, सगे मौसेरे भाई। मंगम्मा ने पूछा, बड़े धनवान हैं? जोशी ने कहा, सुवन्नापेट में उनका सिनेमा है, उसी से उन्हें हर महीने 4-5 हज़ार रुपये आते हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी है? जमींदार के बाद उनकी बराबरी के यही एक रईस हैं, कहते हैं जमींदार इनके इशारों पर नाचते हैं। एक सप्ताह में फिर रामेश्वरम रंगापुर आया। जोशी ने उसे भोजन पर बुलाया और फिर से सारा प्रबंध किया, परंतु आज उसने भोजन परोसते समय मंगम्मा को नहीं घूरा। इस बात पर जोशी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। रामेश्वरम के बारे में उसके मन में कोई संदेह किसी समय उत्पन्न हुआ भी था तो आज वह साफ हो गया। जोशी भोजन करके स्कूल चला गया। 12 बज गए। पहले की तरह मंगम्मा पीछे के कमरे में लेट गई। रामेश्वरम ने आज ही पानी मांगा। मंगम्मा ने पानी लाकर पहले की तरह द्वार पर रख दिया। रामेश्वरम ने हाथ मुंह धोकर फिर पानी मांगा और पलंग पर बैठ गया। उसके लोटे में पानी भरने के लिए मंगम्मा को कमरे के भीतर जाना पड़ा। वह पलंग के पास जाकर पानी भरने लगी। रामेश्वरम ने लोटा छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मंगम्मा ने छुड़ाने की कोशिश की पर रामेश्वरम ने नहीं छोड़ा। बाएं हाथ से उसने 10-10 के 2 नोट जेब से निकाले और उसे हाथ में थमा दिए। मंगम्मा ने बाएं हाथ से वे नोट ले लिए। जोशी 1:30 बजे घर लौटा। मंगम्मा घर के पीछे वाली झोपड़ी में पड़ोसिन से बातें कर रही थी। जोशी ने उससे पूछा, प्रेसिडेंट साहब के लिए नाश्ता नहीं बनाओगी? मंगम्मा बोली, बड़े तैयार रखे हैं। जोशी बोला, बड़ों के साथ कॉफ़ी भी चाहिए। जोशी को कॉफ़ी पीने की आदत नहीं थी, फिर भी उसने दुकान से पॉल्सन कॉफ़ी का डिब्बा घर ला रखा था। कॉफ़ी का पाउडर पुराना पड़ गया था। जोशी को कॉफ़ी रुचि नहीं, परंतु रामेश्वर ने कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम को सुवन्नापेट जा रहा था। उसे गणाचारी के घर के सामने से गुजरना पड़ता था। गणाचारी घर के बाहर खड़ी थी। रामेश्वरम को दूर से देखकर वह भीतर चली गई। रामेश्वरम आकर द्वार के सामने खड़ा हो गया। गणाचारी ने उसके विचारों को ताड़ लिया। वह भीतर से हल्दी लेकर बाहर आई। रामेश्वरम वहाँ से हिला नहीं। उसने देखा कि गणाचारी ने एक हथेली पर हल्दी रखकर दूसरी से उसे मलना शुरू किया। हल्दी का पीलापन गायब हो गया और वह धूल बन गई। गणाचारी ने उस धूल को रामेश्वरम की आंख में फूंका। आंखें जलने लगीं और वह वहां से चल दिया। गणाचारी ने घर में जाकर स्नान किया। सांझ हुई, जो युगो युगों से होती आई थी वह सांझ सचमुच हुई भी तो क्या। प्रभात में संध्या अंतर्निहित होती है, उदय में अस्त रहता है, अस्त में उदय गर्भित होता है। उदय और अस्त दोनों में एक द्वंद्व है, सुख और दुख की भांति। पुण्य और पाप में भी द्वंद्व है। वह अस्त भी तात्कालिक होता है, उसमें कोई नित्यता नहीं होती। यही तो दुख की बात है। 1 महीने के भीतर ही जोशी का तबादला सुवन्नापेट हो गया। अन्य अध्यापकों ने कहा, प्रेसिडेंट साहब की मेहरबानी उस पर हुई है, उसे अब कौन कमी है। कुछ लोगों ने कहा, षट रसों से खिलाया हुआ खाना क्या यूं ही जाएगा। जोशी के सुवन्नापेट आते ही रामेश्वरम ने उसे 2 ट्यूशनें दिला दिए। दोनों ट्यूशनों से कुल 10 रुपये और वेतन 25 रुपये। इस प्रकार 35 रुपये की आमदनी हो गई। जोशी की गृहस्थी पहले की अपेक्षा अब अच्छी तरह चलने लगी। एक ट्यूशन सवेरे और दूसरा शाम को करना पड़ता था, अतएव जोशी सवेरे से रात तक घर लौटता ही न था, केवल दोपहर का भोजन करने आता। केवल शनिवार और रविवार को वह घर पर रहता था। एक दिन मंगम्मा की उंगली पर उसे एक अंगूठी दिख पड़ी। जोशी ने पूछा, यह अंगूठी कहाँ से आई? मंगम्मा बोली, मुझे मिली है। इतनी अच्छी अंगूठी कौन फेंकेगा, और फिर देखने में नई लगती है। कुछ देर तक इसी प्रकार प्रश्नोत्तर चलते रहे, परंतु वह बात वहीं रह गई। दूसरे दिन मंगम्मा रसोई बना रही थी। जोशी ने कहा, मेरा दुपट्टा नहीं मिलता, कहीं तुम्हारे बक्से में तो नहीं रखा? मंगम्मा बोली, मेरे बक्से में कैसे पहुंच गया? जोशी ने कहा, हो सकता है भूल से रह गया हो, जरा चाबी तो दो देखूं। मंगम्मा बड़े आवेश से बोली, मेरे बक्से में नहीं है। जोशी बोला, तुम्हारे बक्से में रखा हुआ सोना मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना दुपट्टा चाहिए। यह कहता हुआ वह चाबी ढूंढने लगा। प्रतिदिन मंगम्मा चाबी अपने आंचल में बांधे रखती थी। उस दिन उसने स्नान करते समय उसे खोलकर दीवार पर लगी खूंटी पर लटका दिया था। उस दिन शुक्रवार था, जोशी को स्कूल जाना था। इसी से मंगम्मा ने असावधानी बरती। उसे आशा थी कि जोशी जल्दी जल्दी भोजन करके चला जाएगा। मंगम्मा मना करती रही, परंतु जोशी ने उसका बक्स खोलकर देखा। बक्से में चार पांच मूल्यवान साड़ियां थीं, जिनमें एक जरी की थी। पूरा बक्स सेंट की शीशियों आदि सुगंधित द्रव्यों से भरा था। एक साड़ी की तहों में 50 रुपये के नोट फिसल कर नीचे गिरे। जोशी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उधर मंगम माँ घर के दरवाजे पर खड़ी और निष्प्राण सी शून्य दृष्टि से इधर उधर ताक रही थी। जोशी ने पूछा, ये सब कहाँ से आए? मंगम्मा बोली, सब मेरे हैं। जोशी बोला, तुम्हारे हैं? क्या तुमने कमाए हैं? मंगम्मा बोली, मेरी माँ ने खरीद कर भेजे हैं। जोशी ने कहा, अच्छा, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। फिर जोशी ने उन वस्तुओं के बारे में खोद खाद कर पूछना शुरू किया, परंतु मंगम्मा वही उत्तर देती गई। जोशी ने उसे बहुत बुरा भला कहा और अंत में क्रोधावेश में उसके खूब मरम्मत की। वह रोने लगी। जोशी बिना भोजन किए ही स्कूल चला गया। वहाँ उसके हाव भाव देखकर अन्य अध्यापकों ने ताड़ लिया कि घर में कुछ गड़बड़ हुई है। वे आपस में फुसफुसा कर हंसने लगे। जोशी ने उनकी हंसी देखी। समझ में नहीं आया कि उसे देखकर वे सब क्यों हंस रहे हैं। वह स्कूल की छुट्टी होने तक बड़ी मुश्किल से वहाँ रहा और 1:30 बजे घर चला गया। भूख लग चली थी। सोचा, घर पहुंचकर खाना खाऊंगा, पर वहां मंगम्मा आंचल बिछाकर पड़ी सो रही थी। रसोई घर में जाकर देखा तो भिगोया हुआ चावल ज्यों का त्यों पड़ा था। चूल्हे में लकड़ियां थोड़ी थोड़ी जलकर बुझ गई थीं। जोशी की नज़र बक्से पर पड़ी, उसमें साड़ियां आदि नहीं थीं। उसने मंगम्मा को जगाया और पूछा। वह बोली, वह सब मैंने एक गरीब को दे डाला है। जोशी ने पूछा, पैसे भी दे डाले? मंगम्मा बोली, हाँ। जोशी ने फिर पूछा, कौन है वह गरीब? मंगम्मा बोली, कोई रास्ते जा रहा था, उसे बुलाकर मैंने सब कुछ दे डाला। जोशी पहले ही भूखा था। तिस पर इस टेढ़े उत्तर ने उसके क्रोध को और भड़का दिया। उसने मंगम्मा को लगातार पीटा। मंगम्मा इतने जोर से रोई कि लगा जैसे घर का छप्पर उड़ जाएगा। पड़ोस वाले आकर कहने लगे, उसे क्यों पीटते हो? क्या किया है उसने? परंतु जोशी को ऐसा लगा कि उसे देखकर सब हंस रहे हैं। उसका मन संदेह में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे यह किस पाप का फल भोगना पड़ रहा है। शाम को जोशी ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहा था। रामेश्वरम से उसकी भेंट हुई। जोशी ने नमस्कार किया। न जाने क्यों उसे देखते ही रामेश्वरम के चेहरे का रंग उड़ गया। जोशी ने पूछा, बाबूजी जान पड़ता है कहीं जाने के लिए निकले हैं? रामेश्वरम ने कहा, विजयवाड़ा जा रहा हूँ, गाड़ी मिलेगी? जोशी ने कहा, जी हाँ, काफ़ी समय है। जोशी घर आया। मंगम्मा रसोई बनाकर खुद खाकर सो गई थी। जोशी ने घर में चारों ओर देखा, उसे भूख लगी थी। उसने स्नान किया और खाना परोस कर खाया। दिन भर उसका मन ऊहापोह में झकोरे खाता रहा था। क्या वे सही वस्तुएं मंगम्मा की माँ की भेजी हुई हैं? इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से आईं? माँ ने कब भेजी होंगी? इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए होंगे भला? मंगम्मा को उसके मायके वालों ने केवल मंगलसूत्र के साथ ससुराल भेजा था। आज एक बारगी इतनी मूल्यवान सामग्री क्यों उसके सिर पर लादने चले होंगे? दोपहर को मेरे घर पहुँचने तक ही इसने सब वस्तुएँ किसी गरीब को दे दी। कौन है भला ऐसा वह गरीब? जान पड़ता है इसने मेरी इज्जत बाजार चढ़ा दी है। इसीलिए शहरों में गृहस्थी नहीं रखनी चाहिए। इस शहर में धनवान कितने हैं? कॉलेज के विद्यार्थी कितने हैं? अधिकारी गण कितने हैं? जान पड़ता है इस मामले से जिस व्यक्ति का संबंध है वह अवश्य कोई धनवान होगा, नहीं तो इतने पैसे कहाँ से आते? इतनी मूल्यवान साड़ियाँ कहाँ से आती? सुगंधी की शीशियाँ कहाँ से आती? सुगंधित द्रव्यों को यह कब उपयोग में लाती होगी भला? इधर कुछ दिनों से इसके श्रृंगारी हाव भाव बढ़ते जा रहे थे। मैं बहुत खुश था, परंतु वह सब श्रृंगार मेरे लिए नहीं था। ओहो, मेरा जीवन भी क्या जीवन है! मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा हो। मेरे माता पिता नहीं हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन अपनी अपनी गृहस्थी चला रही हैं। भगवान की कृपा से अब तक मेरे कोई संतान नहीं हुई, यह बहुत अच्छा हुआ। अब मैं इस पत्नी को क्या करूँ? एक तो कुरूप हूँ, काला कलूटा हूँ, चेहरा चेचक के दागों से भरा है। इसके विपरीत मेरी पत्नी सुंदर है, फिर मुझसे वह क्यों प्रेम करेगी भला? ऐसे बदसूरत लोगों को ब्याह नहीं करना चाहिए। सुंदर पुरुषों को क्या सुंदर स्त्रियाँ ही मिलती हैं? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हो सके तो फिर माता पिता अपनी लड़कियों के लिए धनवानों का नाता क्यों ढूंढते हैं? हाँ, अब समझ में आया। इसका कारण यही है कि स्त्रियाँ धनवान को चाहती हैं। मैं कंगाल हूँ। मेरी पत्नी को ससुराल आए 3 वर्ष हो गए, पर मैंने उसके लिए एक गहना तक नहीं बनवाया। यही मेरे प्रति उसके अनादर का कारण है। मेरा वेतन खाने के लिए, घर के भाड़े के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाने के लिए ही काफ़ी नहीं होता। अब इस पत्नी को क्या करूँ? मार डालूँ? मार डालूँगा तो गड़बड़ मचेगी, मुकदमा चलेगा, मुझे फांसी मिलेगी। अब तो शायद इसे मायके भेजना ही अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मायके वाले क्या इसे वापस नहीं भेजेंगे? खैर, तब की बात तब देखी जाएगी। फिलहाल तो पिंड छूटेगा, वह आदमी कौन होगा भला? रामेश्वरम तो नहीं, रंगापुर में वह 2 बार हमारे यहाँ भोजन करने आया था। तब मैंने स्कूल जाते हुए उसे अपने घर में आराम करने के लिए ठहराया था। ठीक ही तो है, मेरी स्त्री ने मुझसे पूछा भी था कि क्या ये धनवान है। तब मेरे मन में उन दोनों के बारे में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। भला वे दोनों संदेहास्पद व्यवहार क्यों करते, आखिर इसमें उनका दोष भी क्या है। दोनों को एक घर में छोड़कर बाहर जाने वाला दोषी तो मैं हूँ, फिर भी रामेश्वरम इतना मित्रघाती है, परंतु मैं क्या उसका मित्र हूँ, मैं तो मातहत हूँ। अभी अभी मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्यों भला, उफ, मेरे प्राणों को यम यातना में झोंकने वाला क्या यही आदमी है। वाह रे, मैं तो यह सोचता था कि उसने मुझे आश्रय दिया और मेरी रक्षा की। क्या इस आश्रय और मेहरबानी का यही कारण है? क्या पता यही है या कोई और, नहीं तो इतना धनवान और कौन है। धन का क्या है, कोई भी चोर धन चुरा कर ला सकता है। सुगंधी आदि से ऐसा लगता है कि आदमी निर्भीक है। इतनी निर्भयता मेरे वरिष्ठ अधिकारी के अतिरिक्त और किसमें हो सकती है? और इन तमाम वस्तुओं को बक्से में रखकर इस घर में निश्चिंत रहने की निर्भयता मेरी पत्नी में भी कहाँ से आ सकती है? इस मामले के पीछे कुछ ऐसी भावना दिखाई देती है कि मुझे पता चल भी जाए तो डर की कोई बात नहीं। शायद उन्होंने यह भी सोचा होगा कि मुझे उनके इस मामले का पता चल चुका है और फिर भी मैं चुप्पी साधे हुए हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अकेले को छोड़कर बाकी सब लोग इस बात को कभी के जान चुके हैं। स्कूल के सही मास्टर मुझे देखकर आपस में हंस रहे थे। पड़ोसी भी आपस में कुछ कानाफूसी करते हुए उलाहनों के ढंग पर बातें करते थे। मेरे लिए ट्यूशनों का प्रबंध क्या इसी उद्देश्य से किया गया था? उस रात जोशी तालाब में डूब मरने के उद्देश्य से 2-3 बार अपने घर से निकलकर कुछ दूर तक गया, पर लौट कर फिर सो गया। ओहो, प्राण कितने प्यारे हैं, प्राण ही सबसे अधिक मधुर होते हैं। बरसों से व्याधिग्रस्त होकर रोज 100-100 मौत मरने वाला ही मरना नहीं चाहता। भूख से बेजार होकर भीख मांगता हुआ, पग पग पर अपमान सहने वाला कंगाल भी अपनी निर्लज्ज देह को तजना नहीं चाहता। पग पग पर महापाप करता हुआ दग्ध देह तथा दग्ध हृदय बनने वाला महाराक्षस यह जानते हुए भी कि इन पापों का फल महानरक या घोर मृत्यु में भोगना पड़ेगा, उन पापों से दूर नहीं रह सकता और मरने का संकल्प करके ही मर नहीं सकता। दुर्जनों के फंदे में पड़कर कोई भी प्राणी अपने बलवान शत्रुओं के आघात से अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता। जिसने सुख का लेश भी न जाना हो, जो निर्धन हो, कोढ़ी हो, ऐसा व्यक्ति भी शरीर तजना नहीं चाहता। जिसके पातिव्रत से पति के जीवन में शांति तथा सुख का समावेश होता है, उसी पत्नी के द्रोह के कारण अपना सारा जीवन हास्यास्पद और दुखी हो जाने पर भी वह अभागा पति अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। इतना ही क्यों, शताब्दियों से गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ राष्ट्र निर्लज्जता से स्वतंत्र राष्ट्र की नकल करता रहता है, पर अपना अंत नहीं कर लेता। मृत्यु सही प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, परंतु हर प्राणी मृत्यु से दूर भागने का प्रयत्न करता है। मृत्यु बड़ी विचित्र है, जब उसे किसी प्राणी को ग्रहण करना नहीं होता तो वह उसे चाहे जितनी दूर तक भागने देती है। वह प्राणी यह समझ कर खुश होता है कि वह मृत्यु से बच जाएगा। उसकी समझ में यह नहीं आता कि सचमुच मृत्यु का उसे ग्रहण करना था ही नहीं। जोशी बाहर के चबूतरे पर जा लेटा, फिर से मरने का संकल्प करके वह बाजार में निकल पड़ा। उसके सामने 2 कुत्ते सिर उठाकर रोने लगे। जोशी के सीने में दुख उमड़ पड़ा। रोता रोता फिर चबूतरे पर जा लेटा। आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी चीखता हुआ पास वाले पीपल के वृक्ष पर जा बैठा। जोशी को स्मरण हो आया कि बचपन में जब यह पंछी कूकता था तो उसकी माँ गालियाँ देती थी। वह कहा करती थी कि इस पंछी के कूकने से कोई आदमी मर जाता है। जोशी सोचने लगा, अब कौन मरेगा, मैं तो 3 बार मरने चला और फिर लौट कर आ गया, क्या मेरी पत्नी मरेगी? मुझमें अब इतनी शक्ति कहाँ कि उसे मार डालूं? क्या वह खुद मरेगी? वह क्यों मरने लगी? क्या उसे प्राप्त नया सुख कड़वा हो गया है? क्या वह उस बिल्ली जैसा व्यवहार करेगी जो दूध न पी सकने के कारण उसे जमीन पर बहा देती है? इतने में मुर्गे की बांग सुन पड़ी। उस बांग का आशय था, सुनो, तुम लोग बिल्कुल बेखबर हो, पता नहीं ये मानो चोर हैं कि सरदार, सरदार भी चोर ही हैं। वे तुम्हें और तुम्हारी जाति को पनपने नहीं देंगे। अधिकारी बनकर तुम्हारे घरों का सर्वनाश कर रहे हैं, तुम्हारे वंशों का क्षय कर रहे हैं। जोशी के मन में उबाल सा आ रहा था, उसका चेहरा सूख गया। लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। जोशी उठकर गांव के दक्षिण की ओर चल पड़ा। सूर्योदय जब हुआ वह गांव के बाहर पहुंच चुका था। लाल लाल सूर्य बिंब उसे ऐसा लगा मानो किसी दुखी प्राणी के हृदय में उसकी पत्नी के कुकृत्य के कारण उत्पन्न हुई जलन असह्य हो उठी हो और उसने अपने जलते हृत्पिंड को पूर्व की ओर फेंक दिया हो।